आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। और आज हमारे लौटते परिंदे कार्यक्रम पर लौट आए हैं एक संगीतकार जो कभी फौजी थे, मदन मोहन कोहली। जानते हैं, मदन जी का जन्म बगदाद में हुआ था, जहां पर उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस के साथ काम करते थे। बचपन से ही मदन जी को संगीत से लगाव था और घंटों ग्रामोफोन पर संगीत सुनते थे। जब इराक ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तो राय बहादुर भारत आ गए। भारत आने पर राय बहादुर चुन्नीलाल बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो के पार्टनर बन गए और मदन मोहन जी सेना में भर्ती हो गए। लेकिन दिल तो था संगीत में, तो मौका मिलते ही आर्मी छोड़कर लखनऊ आ गए ऑल इंडिया रेडियो पर, जहां पर थे नामी शायर और गजल गायक भी। और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई तलत महमूद के साथ, जो बदल गई एक नई दोस्ती में।
समा है ये प्यार का,
ये नई प्रीत है।
और लता जी के साथ उनका रिश्ता बना भाई बहन का, और उनके संगीत को एक नई आवाज, नया अंदाज मिला। फिल्मी दुनिया में मदन मोहन जी ने कई संगीतकारों के साथ, जैसे कि दादा बर्मन, सी रामचंद्र, इस तरह कई संगीतकारों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। कहा जाता है कि किशोर कुमार के सामने उन्होंने मोहम्मद रफी को अधिक पसंद किया, लेकिन किशोर कुमार के साथ भी जब उन्होंने काम किया तो उन्हें एक नया अंदाज दिया। याद है ना आपको फिल्म मनमौजी के गाने?
जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है।
कहते हैं 50 से 70 का दौर सुनहरा दौर था अगर संगीत की बात करें। यूं तो हर 2-2.5 दशक पहले का दौर सुनहरा ही लगता है, क्योंकि एक पीढ़ी उसी संगीत को सुनकर बड़ी होती है और वो उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। क्योंकि आज से 2 दशक बाद इसी युवा पीढ़ी के लिए यही सुनहरा दौर बन जाएगा, लेकिन फिर भी कई पैमानों पर 50 और 70 के दशक का संगीत सुनहरा ही कहा जाता है, क्योंकि शायद तब साज और आवाज का एक अलग ही तालमेल था, कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होता था। और आज मदन मोहन के संगीत पर ही कुछ बात कर रहे हैं आलोक कुलश्रेष्ठ, जो जुड़े हैं संगीत के साथ, और कहानियों को रेडियो पर कहने का एक उनका अलग ही तरीका है। और इसके अलावा उन्होंने कभी मदन मोहन साहब के बेटे से भी मुलाकात की और कुछ व्यक्तिगत बातें की। तो मदन मोहन के संगीत के लिए उनका कहना है।
भाई अनिता जी, मदन मोहन से जो हमारा तारुफ या जो मोहब्बत हुई है वो हुई गजल की वजह से है, क्योंकि एक इनकी फिल्म आई थी मेरे ख्याल में 1964 में, जहारा
जी,
और उसकी जितनी भी गजल थी, चुप रहो वो चुप रहे हैं तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, या फिर वही शाम वही गम वही तनाई, इनसे एक एक, एक एक इस तरह का जुड़ाव हो गया। तलत की आवाज और मदन मोहन की धुने, इनसे एक ऐसा जुड़ाव हो गया था कि उस वक्त से ही जो मदन मोहन के लिए दिल में प्यार मोहब्बत और खुलूस जागा वो लगातार चलता रहा, और हमेशा हम देखते रहे कि इसकी जो भी म्यूजिक कंपोजिशंस आए उनमें वही मजा आता रहा। अगर वैसे ये देखा जाए कि क्या खास बात है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो माधुर्य और मेलोडी अनिल बिस्वास ने हमारे हिंदी फिल्म म्यूजिक को दिया था
जी।
अनिल बिस्वास तो काफी कुछ ट्रेडिशनल मतलब क्लासिकल और उस पे बेस था, लेकिन मदन मोहन ने उसको एक अलग ही लेवल पे ले गए। मुझे थोड़ा सा मदन मोहन जी से व्यक्तिगत रूप से इसलिए मैं इनका फैन बन गया, क्योंकि इनके बेटे हैं संजीव कोहली
जी,
जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था उसके चेयरमैन भी कोहली साहब थे। उन्होंने संजीव कोहली को मेरे पास भेजा था, और जब ये पता लगा संजीव कोहली से बातों बातों में कि ये मदन मोहन कोहली के बेटे हैं, तब बहुत ज्यादा मुझे इनसे वो हो गया और उन्होंने कई बातें शेयर भी।
तो आलोक जी, संजीव कोहली के साथ में जो आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और उनके साथ जो बातें की, उनमें से क्या कोई बात आप हमारे साथ में भी साझा कर सकते हैं मदन मोहन जी के बारे में?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही पता लगा कि संजीव कोहली जी मदन मोहन जी के बेटे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनसे बातचीत करके। जिस काम के लिए वो आए थे वो तो अलग हो गया और हम लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये था कि मदन मोहन जी को अगर उस जमाने में जो उनके लास्ट डेज थे उसमें काफी ये महसूस हुआ कि जो उनको रिकग्निशन फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कंपोजर मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिला। उनको जो आखिरी सालों के अंदर उनको ये महसूस होने लग गया था मदन मोहन जी को। और फिर जब उनके जाने के बाद जो फिल्म मौसम जैसे आई, मौसम में उनको बहुत ही एक्लेम मिला और शायद फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुई मौसम भी, तो उस के टाइम में उनको इतना नहीं मिला। संजीव ने एक यही बात मुझे बताई कि उनके पिताजी को बहुत ज्यादा वेल ड्रेस रहने का और बहुत अच्छा शौक था।
अच्छा।
और जी। वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे, तो उन्होंने बताया कि इतना वेस्टर्न आउटलुक का व्यक्ति और जब वो धुने बनाते थे तो बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन धुनों पे बनाते थे
जी।
तो वो उन्होंने बताया कि आप सोच भी नहीं सकते उनको से।
उनका आर्मी का बैकग्राउंड था तो बहुत ही डिसिप्लिन भी रहते थे वो। और इसके अलावा जहाँ तक उनके म्यूजिक की बात है और जो गजल की बात आज हम कर ही रहे हैं, उनको गजल सम्राट कहा जाता था गजल कंपोजिशन के लिए। फिल्म जहांआरा जो बिल्कुल बेमिसाल उसका संगीत था जिसकी बात आपने की, अब ये कुछ नियति कहें कि ये वही साल था जब फिल्म फेयर के लिए वो नॉमिनेट तो हुए थे फिल्म जहांआरा के लिए, लेकिन अवार्ड मिल गया था और ऐतिहासिक फिल्म ताजमहल को और उसके म्यूजिक कंपोजर थे रोशन जी। उसके बाद कई ऐसे मौके आए, ऐसे लगा कि उनका संगीत शायद ऊंचाइयों पे जाएगा, अवार्ड की ऊंचाइयों पे जाएगा, लेकिन उनको वो मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था।
नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक खास बात जो देखिए, जैसे अनपढ़ के लिए, अनपढ़ के लिए भी लोगों ने सोचा था कि उनको अवार्ड मिलेगा, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला। आपकी नजरों ने समझा और है इसी में प्यार की आबरू, ये जो दो इतने बढ़िया गाने थे कि जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि नौशाद साहब को इनको सुनने के बाद, दोनों को सुनने के बाद एक बार मदन मोहन जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि भाई आप ये दो कंपोजिशंस मुझे दे दो और मेरा सारा वर्क है वो आप ले। तो इस तरह की जो, हालांकि हो सकता है नौशाद साहब ने उनको केवल अप्रिशिएट करने के लिए बात कही,
लेकिन इतनी बड़ी बात कहना मायने रखती है ना। जी
बिल्कुल बिल्कुल। संजीव ने एक खास बात जो मुझे बताई वो ये थी कि देखिए उस जमाने में जो पिक्चर्स बनती थी वो भी आज की तरह स्टार बेस्ड थी। दिलीप कुमार के साथ नौशाद थे, राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन थे, देवानंद के साथ एस डी बर्मन थे।
जी।
तो इनको बड़े बैनर की जो फिल्म नहीं मिल पाई तो उसका इनको एक जिंदगी भर थोड़ा सा मलाल ही रहा।
ये बात है कि फिल्म उद्योग हमेशा ही कहीं ना कहीं स्टार या स्टूडियोज का मोहताज रहा है शुरू से ही। और यही बात हुई कि जो गोल्डन ट्रियो थे दिलीप साहब, देवानंद साहब और राज कपूर, क्योंकि उनके अपने अपने कैंप्स थे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, उनके लिए मुश्किल रहा अपनी जगह बनाना, लेकिन आज उनका संगीत इस बात की तो गवाही देता ही है कि वो कितने महान संगीतज्ञ थे। और इसी सुनहरे दौर की तिगड़ी थी दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। और ये वो समय था जब फिल्मी दुनिया की इस सुनहरी तिगड़ी का अपना अपना संगीत निर्देशक भी हुआ करता था। जैसे अगर राज कपूर की बात करें तो शंकर जयकिशन उनके कैंप में थे, देवानंद की बात करें तो वो सचिंदा के अलावा किसी और की सोच ही नहीं पाते थे, और दिलीप कुमार की बात करें चाहे उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी लेकिन फिर भी वो अपनी फिल्मों में नौशाद साहब का संगीत ही चाहते थे। ऐसे में मदन मोहन ने उन सब के बीच में अलग अपनी एक पहचान बनाई। लेकिन हैरानी होती है कि उन्हें कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला। हाँ, 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड मिला। लगता है कि शायद अब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो हमसे दूर हो गए।
मैं बस अपने जिया की।
सुनहरे दौर के इस बेमिसाल संगीतकार के बेमिसाल संगीत के कौन कौन से गीतों को याद करें, बस यही कह सकते हैं कि सुरों का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। कला के माध्यम से कलाकार हमेशा ही जिंदा रहता है और तभी तो उनके जाने के बाद में भी आज के दौर में वीरजारा में उनका संगीत सुनाई भी दे सका और एक नई ऊंचाइयों को छू भी सका। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।